एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे। देखा तो मैंने ये पाया, मौत का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको, बाहों में थाम। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको, बाहों में थाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सजदे का से। ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचनों को सुनने समझने और उसके अनुसार चलने के लिए मदद कर। मुझे भी तेरा पवित्र आत्मा का विशेष आशीर्वाद दे पिता, कि मैं तेरे वचनों को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है मनुष्य का स्वभाव। हम बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति का 1:26 में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने अपनी इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को शब्दों द्वारा अस्तित्व में नहीं लाया, इसके बजाय उसने प्रेम से झुककर धरती की मिट्टी से इस नई रचना को तराशा। पृथ्वी का सबसे रचनात्मक मूर्तिकार भी ऐसे श्रेष्ठ प्राणी को कभी नहीं तराश सकता था। यद्यपि माइकल एंजेलो शानदार बाहरी रूप को सजा सकता था, लेकिन शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का क्या, जिसे ध्यानपूर्वक कार्य करने के लिए साथ ही सौंदर्य के लिए भी रूपांकित किया गया। सिद्ध मूर्तिकला प्रत्येक बाल पलके नाखून के साथ लेटी थी, लेकिन परमेश्वर ने अभी समाप्त नहीं किया था। यह आदमी धूल जमने के लिए नहीं था, बल्कि जीने के लिए, सोचने के लिए, पैदा करने के लिए और महिमा में बढ़ने के लिए था। इस शानदार आकृति के ऊपर झुककर सृष्टिकर्ता ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7-1:26 में हम पाते हैं, आदमी के लिए साथी की आवश्यकता का एहसास करते हुए परमेश्वर ने एक ऐसा सहायक बनाया जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। उत्पत्ति 2:18-21-22 में हम पाते हैं, इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1:28। पृथ्वी पर आज की तुलना में बेहतरीन से अधिक शानदार एक बगीचा घर आदम और हवा को दिया गया। वहाँ वृक्ष, बेलें, फूल, पहाड़ियाँ, घाटियां थी। सबको स्वयं परम प्रधान ने सुशोभित किया था। दो विशेष वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष और एक भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष वहां थे। परमेश्वर ने आदम और हवा को प्रत्येक पेड़ के फल को खाने की अनुमति दी सिवाय भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को, उत्पत्ति 2:8-9-17। इस प्रकार सृष्टि सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम पूरा किया गया और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, उत्पत्ति 1:31। हालांकि आज कई लोग मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति पशु जीवन के निम्न रूपों से हुई और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है जिसमें अरबों साल लगे। इस तरह के विचार को बाइबल के विवरण के साथ सामंजस्य में नहीं लाया जा सकता। यह कि मानव पतन की प्रक्रिया के अधीन रहा है, मनुष्य के स्वभाव के बारे में जानना बाइबल के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने मानव को रचा। मनुष्य जाति की उत्पत्ति पवित्र विचार में पाई जाती है। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं, उत्पत्ति 1:26। बहुवचन हम परमेश्वरत्व के त्रिएक होने की ओर संकेत करता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा, तब एक ही उद्देश्य से परमेश्वर ने प्रथम मानव की रचना आरंभ की, उत्पत्ति 1:27। परमेश्वर ने पूर्व अस्तित्व तत्व भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की, परंतु जीवन के अन्य रूप नहीं, जैसे जल व पृथ्वी के पशु। जब तक उसने प्रत्येक अंग को उनके स्थान पर स्थापित नहीं कर दिया, उसने जीवन के श्वास का आरंभ नहीं किया जिससे वह जीवित प्राणी बन जाता। एक दिव्य प्रकार में रचा गया है मनुष्य। परमेश्वर ने प्रत्येक अन्य प्राणी, मछलियां, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकौड़े, स्तनधारी पशु आदि को उनकी जाति के अनुसार रचा, उत्पत्ति 1:21-24-25। प्रत्येक प्रजाति का अपना एक विशिष्ट रूप था और अपनी विशिष्ट तरह के प्रजनन की क्षमता थी। हालांकि मनुष्य की सृष्टि दिव्य रूप में की गई, ना कि किसी पशु जाति के रूप में। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, उत्पत्ति 1:26। मनुष्य जाति एवं पशु जाति के बीच एक स्पष्ट अनिरंतरता है। मानव जाति की उत्पत्ति का वर्णन करने वाले लूका की वंशावली प्रविष्टि इस अनिरंतरता को सरलता से लेकिन गंभीरता से व्यक्त करती है। आदम परमेश्वर का पुत्र है, लूका 3:38। मनुष्य की गौरवान्वित स्थान है। मनुष्य की सृष्टि समस्त सृष्टि की चरम सीमा थी। परमेश्वर ने मनुष्य को, जिसे प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में रचा था, ग्रह पृथ्वी और सभी पशु जीवन का प्रभारी बनाया। आदम के विषय में एल बेरखोस कहते हैं कि उसका यह कर्तव्य और विशेष अधिकार था कि वह संपूर्ण प्रकृति एवं सृष्टि किए गए प्राणियों को, जिन्हें उसके अधिकार में रखा गया था, अपनी इच्छा एवं उद्देश्य के अधीन रखे, ताकि वह उसका संपूर्ण गौरवशाली अधिराज्य, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता और जगत के प्रभु की महिमा बढ़ाए, उत्पत्ति 1:28 और भजन संहिता 8:4-9 में हम यह बात पाते हैं। उत्पत्ति में वंशावलियां प्रदर्शित करती हैं कि आदम और हवा के पश्चात आने वाली पीढ़ियां सब इस प्रथम जोड़ी से आई। मनुष्य होने के नाते हम सभी समान स्वभाव को साझा करते हैं, जो एक अनुवांशिक या वंशावली एकता बनाता है। पौलुस ने कहा, एक ही मूल से उसने, परमेश्वर ने मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, प्रेरितों के काम 17:26। इसके अतिरिक्त हमें अपनी जाति की जैविक एकता के अन्य संकेत बाइबल के दावे में मिलते हैं कि आदम के अपराध द्वारा सब पर पाप और मृत्यु आई और सबके लिए उद्धार के प्रावधान में जो मसीह के माध्यम से हुआ, रोमियो 5:12-19 तथा पहला क्रंतियों 15:21-22। मानव स्वभाव में एकता है। मनुष्य के विशेषता सूचक अंग कौन से हैं? क्या वे अनेक स्वतंत्र घटकों से बने हैं, जैसे कि एक शरीर, एक प्राण और एक आत्मा? जीवन का श्वास क्या है, आइए हम इसे जानते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:7 में। जब परमेश्वर ने पृथ्वी के तत्वों को एक जीवित प्राणी में बदला तो उसने आदम के निर्जीव शरीर के नथनों में जीवन के श्वास को फूंका। जीवन का यह श्वास सर्वशक्तिमान का श्वास है जो जीवन देता है, अय्यूब 33:4। जीवन की चिंगारी, हम इसकी तुलना उस बिजली की धारा से कर सकते हैं जो विभिन्न बिजली के उपकरणों से होकर बहती है। जब हम एक रंगीन टीवी के बटन को दबाते हैं तो वह एक शांत बक्से में भूरे कांच के पैनल को उत्तेजित बिखरे हुए रंग और चहल पहल में बदल देती है। बिजली ध्वनि और गति लाती है जहां पहले कुछ भी नहीं था। मनुष्य एक जीवित प्राणी है। जीवन के श्वास ने क्या किया? जब परमेश्वर ने पृथ्वी के तत्वों से मनुष्य की रचना की, सभी अंग मौजूद थे। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, तिल्ली, मस्तिष्क आदि सभी उत्तम परंतु निर्जीव थे। फिर परमेश्वर ने इस निर्जीव वस्तु में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। बाइबल का समीकरण बिल्कुल सीधा साधा है। पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी का तत्व जोड़ जीवन का श्वास बराबर एक जीवित मनुष्य या एक जीवित प्राणी। पृथ्वी के तत्वों का जीवन के श्वास के साथ मिलन का परिणाम एक जीवित मनुष्य या एक जीवित प्राणी है। यह जीवन का श्वास मनुष्यों तक सीमित नहीं है, यह प्रत्येक जीव जंतु के पास है। उदाहरण के लिए बाइबल जीवन के श्वास उन सभी जानवर के साथ जोड़ती है, वे जो नूह की कश्ती में गए और वे जो नहीं गए, उत्पत्ति 7:15-22। उत्पत्ति 2:7 में इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद जीवित मनुष्य या जीवित प्राणी किया गया है, नेफेस चाया है, या अभिव्यक्ति विशेष रूप से मनुष्य को ही नामित नहीं करती है, क्योंकि यह जल जंतुओं, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जंतु एवं जंगली जानवरों को भी संदर्भित करती है। उत्पत्ति 1:20-24, 2:19। नेफेस जिसका अनुवाद प्राणी या प्राण है, नफास से आता है जिसका अर्थ है श्वास लेना। नए नियम में इसका यूनानी समकक्ष शब्द सुने है, क्योंकि श्वास जीवन का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। नेफेस मूल रूप से मनुष्य को एक जीवित प्राणी, एक व्यक्ति के रूप में नामित करता है। जब जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि सृष्टि की कहानी में, तो यह उन्हें जीवित जीव जंतु के रूप में वर्णित करता है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल कहती है कि मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। सृष्टि के विवरण में कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि मनुष्य ने प्राण प्राप्त किया, एक अलग प्रकार की इकाई जिसे सृष्टि के समय मानव शरीर में जोड़ दिया गया था। मनुष्य के स्वभाव को सही ढंग से समझने के लिए सृष्टि के विवरण को कम नहीं आंका जा सकता। उसकी जैविक एकता पर बल देकर शास्त्र मनुष्य को संपूर्ण रूप में चित्रित करता है। तब फिर प्राण एवं आत्मा मनुष्य के स्वभाव से कैसे संबंधित हैं? बाइबल में प्राण का अर्थ क्या है? पुराने नियम में प्राण इब्रानी शब्द नेफेस का अनुवाद है। उत्पत्ति 2:7 में पृथ्वी के तत्वों से बने भौतिक शरीर में जीवन की श्वास के प्रवेश करने के बाद यह मनुष्य को एक जीवित प्राणी के रूप में घोषित करता है। इसी तरह जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो एक नया प्राणी अस्तित्व में आता है। प्रत्येक प्राण जीवन की एक नई इकाई है जो अन्य समान इकाइयों से विशिष्ट रूप से विभिन्न और पृथक है। लगता है वह विचार है जिस पर हिब्रू शब्द नेफेश जोर देता है। जब इस अर्थ में उपयोग किया जाता है तब नेफेश एक व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, वह स्वयं व्यक्ति है और अनेक अवसरों पर प्राणी के गिनती में आता है। इसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति 14:21 में, गिनती 5:6 में, व्यवस्था विवरण 10:22 में, और तुलना कर सकते हैं हम इसका भजन संहिता 3:2 से। यह स्वयं के रूप में अनुवादित है। लेविवास्ता 11:43 और पहला राजा 19:4 और यशायाह 46:2 में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नए नियम में यूनानी शब्द सुसे का उपयोग पुराने नियम में नेफेश के समान है। इसका उपयोग पशु जीवन के साथ साथ मानव जीवन के लिए भी किया जाता है, जैसे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 16:3 में। सुसे अमर नहीं है लेकिन मृत्यु के अधीन है, जिसे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 16:3 में। हम इसे पढ़ते हैं, यह नष्ट किया जा सकता है जैसा कि लिखा है मत्ती 10:28 में। बाइबल का साक्ष्य स्पष्ट करता है कि कभी कभी नेफेश एवं सुसे संपूर्ण व्यक्ति को एवं अन्य समयों पर मनुष्य के विशेष पहलू जैसे कि अनुराग भावनाएं, भूख एवं अनुभूति को संदर्भित करता है। हालांकि यह उपयोग किसी भी तरह से नहीं दिखाता है कि मनुष्य को मनुष्य दो पृथक और विशिष्ट हिस्सों से बना है। शरीर और प्राण एक साथ मौजूद हैं, एक साथ वे अविभाज्य एकता गठित करते हैं। प्राण का शरीर से अलग कोई चेतन अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई पद नहीं है जो इंगित करता है कि शरीर के पश्चात प्राण एक सचेत इकाई के रूप में जीवित रहता है। बाइबल में आत्मा का अर्थ, जबकि इब्रानी शब्द नेफेश को प्राण के रूप में अनुवादित किया गया है जो व्यक्तित्व या शख्सियत को दर्शाता है। पुराने नियम में इब्रानी शब्द रुआक का अनुवाद आत्मा के रूप में किया गया है जो व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन की ऊर्जावन चिंगारी को संदर्भित करता है। यह दिव्य ऊर्जा या जीवन सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जो मानव को जीवंत करता है। नए नियम में रुआक का समतुल्य शब्द न्यूमा है। न्यो से आत्मा, जिसका अर्थ है फूंकना या श्वास लेना। जैसा कि रुआक में न्यूमा शब्द में भी कुछ अंतर्निहित नहीं है जो यह दर्शाए कि मनुष्य में एक इकाई है जो शरीर से अलग सचेत अस्तित्व के लिए सक्षम है। ना ही नया नियम किसी भी तरह से इस तरह की अवधारणा का मनुष्य के संबंध में उपयोग करता है। जैसा कि रुआक, वैसा ही न्यूमा भी मृत्यु पर प्रभु के पास लौट जाता है। लूका 23:46, प्रेरितों के काम 7:59। रुआक की तरह न्यूमा को परमेश्वर का आत्मा के रूप में भी उपयोग किया गया है। 1 कुरिन्थियों 2:11, इफिसियों 2:4, 1 पत्रस 1:12, 2 पत्रस 1:2 इत्यादि। शरीर प्राण एवं आत्मा की एकता है। शरीर प्राण एवं आत्मा में क्या संबंध है? इस संबंध का मनुष्य की एकता पर क्या प्रभाव है? एक दोहरा मेल। हालांकि बाइबल मनुष्य के स्वभाव को एक एकता में देखती है, यह शरीर प्राण एवं आत्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। कभी कभी प्राण एवं आत्मा का अदल बदल कर उपयोग किया जाता है। घोषणा के बाद मरियम की खुशी की अभिव्यक्ति में उनकी समानता पर ध्यान दे। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, लूका 1:46-47। एक 3 गुना मेल हम पाते हैं। हम बाइबल में पाते हैं पौलुस, जिसने शरीर और आत्मा के दोहरे मेल की बात की, उसने 3 गुना मेल के संदर्भ में भी बात की। वह कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। यह अनुच्छेद पौलुस की इच्छा को व्यक्त करता है कि पवित्रीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति के इन पहलुओं में से कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। एक अविभाज्य सहानुभूतिपूर्ण मेल है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य इकाई है। शरीर, प्राण एवं आत्मा आपसी सहयोग से कार्य करते हैं, जो एक व्यक्ति के आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बीच गहन सहानुभूतिपूर्ण संबंध प्रकट करता है। तो चलिए हम यीशु मसीह के आने तक पवित्र आत्मा के द्वारा अपने संपूर्ण आत्मा और प्राण और देह को पूरी तरह से शुद्ध होने दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों को तू स्वीकार कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए पिता। हम तेरी उपासना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तूने हमें बनाया है। हम सबों को आशीषित कर और हमें तेरे राह में चलने के लिए सुना ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।